ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
और पिछले हफ्ते इस अध्याय का बहुत ही एक महत्वपूर्ण श्लोक पर हमने चर्चा की, यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र। संक्षिप्त रूप में हमने ये निचोड़ निकाला इस श्लोक का कि भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि जो कुछ कर्म कोई मनुष्य करना चाहता है उसे यज्ञ के रूप में करे। और जब कर्म यज्ञ बन जाता है तो उसकी परिभाषा इस प्रकार से दी गई है, प्रॉपर वर्क डन फॉर द प्रॉपर पर्सन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन प्रॉपर कॉन्शियसनेस। तो यहां पर ये जो प्रॉपर कॉन्शियसनेस है ये हमारी ठीक रहे, इसलिए श्रील प्रभुपाद ने इस हरे कृष्ण आंदोलन में हमें साधना भक्ति की विधि दी है। तो हमारे कर्म वो प्रामाणिक हो सकते हैं, अर्थात उसका स्वरूप, नेचर ऑफ आवर वर्क। और हम ठीक है थियोरेटिकली इस बात को भी जान जाते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण के लिए करना है हमें, परंतु ये दोनों प्रामाणिक हो सके इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, प्रॉपर कॉन्शियसनेस। जब तक वो प्रॉपर कॉन्शियसनेस में नहीं किया जाएगा तब तक वो प्रॉपर पर्सन तक पहुंचेगा नहीं। इसलिए उदाहरण दिया गया है कि जरासंध के विषय में आपने सुना होगा, जिनको भगवान श्री कृष्ण और उनकी सेना ने 17 बार हराया। तो जरासंध वो रोज भगवान विष्णु की आराधना किया करता था शालिग्राम के रूप में। He was a devout worshipper of शालिग्राम विष्णु। और यहां विष्णु के स्रोत भगवान कृष्ण के साथ 17 बार युद्ध किया। तो जो भी वो एक प्रकार से यज्ञ जो कर रहा था, शालिग्राम की पूजा जो वो कर रहा था, कॉन्शियसनेस ठीक नहीं था। प्रॉपर वर्क था, प्रॉपर पर्सन के लिए भी था, लेकिन कॉन्शियसनेस इम्प्रॉपर था। तो इसलिए ये तीन मुद्दे होना अति आवश्यक है, और इसके अंदर जो प्रॉपर कॉन्शियसनेस है ये होना अति अति आवश्यक। तो अब इसके पश्चात आज का श्लोक हम लें जिसके अंदर अब भगवान उसी यज्ञ की शुरुआत कैसे हुई, उसकी हिस्ट्री, उस यज्ञ जो हमने पिछले श्लोक में सुना, उस यज्ञ कर्म रूपी यज्ञ की शुरुआत कैसे हुई इसके विषय में बता रहे हैं। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम्
एषवो स्विष्ठ काम दुख सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा।
श्रील प्रभुपाद का अनुवाद इस प्रकार से है, सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों ने स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संस्तुतियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। तो यहां पर कोई ये प्रश्न पूछ सकता है पिछले श्लोक को सुनने के पश्चात कि मैं अपनी इस स्थिति में, जो भी मेरी स्थिति है, मैं इतना उस लेवल तक नहीं पहुंचा हूं कि मैं अपने हरेक कर्म को यज्ञ के रूप में मानूं, तो मेरी स्थिति के लिए क्या शास्त्र ने कुछ निर्धारित किया है। तो हमें यह समझना है कि ये जो आज का श्लोक है इसमें भगवान एक जनरल अंडरस्टैंडिंग जनरल पॉपुलेस को दे रहे हैं कि यज्ञ की शुरुआत कहां से हुई, कब हुई, आज्ञा इस यज्ञ को करने के लिए किसने दी और इस यज्ञ को करने का परिणाम भौतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से क्या होगा। मतलब इतने सारे प्रश्नों का उत्तर एक श्लोक में। तो इसलिए यह भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि एक जनरल अंडरस्टैंडिंग यज्ञ का, उसका इतिहास, उसका वर्तमान और उसका भविष्य क्या है। तो हम सबसे पहले आज के श्लोक की जो पहली लाइन है उसे समझने की कोशिश करेंगे। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा, तो इसका अनुवाद है प्रजा की उत्पत्ति यज्ञों के साथ हुई। तो प्रजा, ये शब्द हमने अक्सर सुना होगा, राजा और राजा की प्रजा। तो यहां पर सहयज्ञा, सहयज्ञा का अर्थ है यज्ञों के साथ प्रजा की सृष्टि हुई। सरल है समझना। अब इसमें हमने पिछले श्लोक से ये समझा है कि यज्ञ और कर्म हम मनुष्यों के लिए एक ही है, एक ही होना चाहिए। पिछले श्लोक के अनुसार हमारे कर्म और यज्ञ में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट इज ऑफर्ड टू यज्ञेश्वर। सो एनी कर्म विच इज ऑफर्ड टू यज्ञेश्वर, फर्स्ट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ कर्म शुड बी ऑफर्ड टू यज्ञेश्वर, एंड व्हेन इट इज ऑफर्ड टू यज्ञेश्वर फॉर हिज प्लेजर, दैट बिकम्स यज्ञ। तो कर्म और यज्ञ पिछले श्लोक के अनुसार कोई अंतर नहीं। इसलिए हम यदि आज के श्लोक में यज्ञ शब्द को कर्म के रूप में भी इस्तेमाल करें तो कोई हानि नहीं, क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान ने क्लैरिफाई कर दिया है यज्ञ और कर्म में कोई अंतर नहीं। तो अब जब यज्ञ और कर्म में कोई अंतर नहीं, तब फिर ये जो प्रजा ये शब्द है इसका अर्थ आज के श्लोक में क्या है। देखिए बहुत से ऐसे पथ हैं जहां पर भगवान और हम मनुष्य बस इन्हीं का संबंध बताया गया है। हालांकि वो धार्मिक पथ हैं, परंतु उनके अनुसार जो बाकी जीव जंतु हैं उनमें आत्मा ही नहीं है, तो केवल जो मनुष्य हैं उनके अंदर ये प्राण हैं और हम मनुष्य ही भगवत धाम जा सकते हैं, या हम मनुष्यों के लिए ही अध्यात्म बनाया गया है। यहां पर प्रजा का अर्थ है केवल मनुष्य नहीं। श्रील प्रभुपाद ने बहुत सरल तरीके से अपने कॉन्वर्सेशंस में, बहुत बार लेक्चर्स में, प्रभुपाद जब अमेरिका में बहुत से क्रिश्चियंस के साथ वार्तालाप करते तो प्रभुपाद पूछते कि आपके देश में जो इतने जानवरों की हत्या होती है तो क्या वो जानवर आपके देश के नहीं है? जैसे आपके देश में आपके देश के नागरिक की कोई हत्या नहीं कर सकता, वो कानूनन जुर्म है, परंतु जो प्राणी हैं उनको यदि कोई जान से मार डाले उसके लिए आपके कानून में कुछ जुर्म नहीं बताया गया। तो श्रील प्रभुपाद ये बतलाना चाह रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण यदि राजा हैं तो उनकी प्रजा केवल मनुष्य नहीं है, उनकी प्रजा में सारे जीव सम्मिलित हैं। किंग एंड हिज सब्जेक्ट्स, जनरली किंग एंड हिज सब्जेक्ट्स मतलब ह्यूमंस, परंतु भगवान श्री कृष्ण के किंगशिप में, उनके किंगडम में सभी जीव उनकी प्रजा है, चाहे वो छोटा सा कीट हो या ब्रह्मा जी, और सभी बीच में उसके बीच सभी भगवान की प्रजा है। तो यदि हम प्रजा का ये अर्थ लें कि सारे जीव भगवान की प्रजा हैं, तो आज के श्लोक में सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा, यदि केवल प्रजा सृष्ट्वा कहा गया होता तो सारे जीव सम्मिलित होते उसमें, परंतु ये जो पहली लाइन है इसमें भगवान क्या कह रहे हैं, वो प्रजा जो यज्ञों के साथ पैदा हुए और वो हैं मनुष्य। तो संस्कृत इतनी रिफाइंड लैंग्वेज है कि ये नहीं बता रही कि डिस्क्रिमिनेट कर रही है बाकी जीव जंतु में और मनुष्यों में, डिस्क्रिमिनेट कर रही है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन किस प्रकार का किया गया है, एकदम कल्चर्ड तरीके से, रिफाइंड तरीके से। जैसे आजकल लोग ये डिस्क्रिमिनेशन को बहुत एक ऑफेंसिव वर्ड मानते हैं कि ये, अभी हाल ही में मेरे साथ कुछ एक हाथ फैमिली डिस्कस कर रहे थे तो वो पूछ रहे थे कि ये जो आपके शास्त्रों में डिस्क्रिमिनेशन के बारे में इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है, जैसे मेल फीमेल का डिस्क्रिमिनेशन इतना, आजकल लोग ज्यादातर यही पूछते हैं मेल फीमेल का डिस्क्रिमिनेशन क्यों इतना, जब आजकल आधुनिक दुनिया में ये 21वीं सदी में हम देखते हैं कि एवरीवन इज इक्वल, सो व्हाई दिस डिस्क्रिमिनेशन। अब देखिए, यदि हम डिस्क्रिमिनेशन वर्ड को लें, वैदिक शास्त्रों को डिस्कस ही ना करें, मैं एज अ नॉन बिलीवर इन वेदास, अगर मैं पूछूं कि क्या इस भौतिक संसार में कोई डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है या नहीं रोजमर्रा की जिंदगी में, डू वी नॉट डिस्क्रिमिनेट इन अवर डे टू डे लाइफ? तो मैंने कहा कि आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो, वहां पर मेन्यू कार्ड में आपने कुछ आपको जो पसंद आया वो आपने ऑर्डर किया, तो मैं बोल सकता हूं व्हाई आर यू डिस्क्रिमिनेटिंग, ईट एवरीथिंग, इक्वालिटी मीन्स ईट एवरीथिंग। तो हम देखते हैं कि खाने से लेके सोना, अपनी रक्षा करना, जो कुछ हम शारीरिक कार्य कर रहे हैं, हर पहलू में हमारे अंदर हम कुछ ना कुछ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। क्यों मैं पढ़ाई करने के लिए इसी कॉलेज में जा रहा हूं? Why I am discriminating and choosing this particular college for my education or for my son's education? Why not be equal and try out every year, every college? एक दिन इस कॉलेज में बैठते हैं, दूसरे दिन उस कॉलेज में बैठते हैं। तो मैंने पूछा कि ओके, यू डोंट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन मेल एंड फीमेल, सो व्हाई यू मैरिड ओनली दिस फीमेल? मैरी एवरी फीमेल, मैरी एवरी मेल ऑल्सो देन इन दैट केस। तो यहां डिस्क्रिमिनेशन जो किया गया है प्रजा में, उसमें बहुत रिफाइंड तरीके से भगवान कह रहे हैं कि वो प्रजा जो यज्ञों के साथ पैदा हुई, विच मीन्स द ह्यूमन बींग्स विच आर बॉर्न विथ यज्ञ। तो यज्ञ का अर्थ क्या हुआ? कर्म है कि नहीं? तो कर्म भगवान बोल रहे हैं किस पर लगता है? हम मनुष्यों पर। तो ये जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन में भगवान ने जो एलिमेंट्री फंडामेंटल भगवद गीता का नॉलेज है उसको कर्म के साथ अब ज्वाइन किया है, दैट कर्म इज एप्लीकेबल ओनली ऑन ह्यूमन बीइंग्स। तो यहां पर ये भगवान बोल रहे हैं कि बाकी की जो प्रजा है जो यज्ञों के साथ पैदा नहीं हुई है, उनको रिलैक्सेशन दिया गया है। तो इसका दूसरा लॉजिक क्या है कि भगवान जब किसी को रिलैक्सेशन दिया जाता है तो वो भी उसको एक इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है ना, उसको छूट दी जा रही है। जैसे बॉस बोलता है कि चलो जाओ वेकेशन पे, छुट्टी तुम्हारी 15 दिन के वेकेशन पे, तो बॉस इंपॉर्टेंस दे रहा है ना उसको, रिलैक्सेशन दे रहा है। तो यहां पर भगवान जब बोल रहे हैं कि कर्म का प्रिंसिपल हम मनुष्यों पर ही लागू है, बाकी की प्रजा पर नहीं, तो भगवान हालांकि डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं लेकिन डिस्क्रिमिनेशन में उनको भी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। इंपॉर्टेंस इस प्रकार से दी जा रही है कि वो जो प्रजा है, पशु योनि जो है, वो केवल उनका नियत जो जीवन है वो जीते हैं। हां, कर्मों के वजह से उनको वो शरीर मिला है लेकिन अब उनके ऊपर वो जिम्मेदारी नहीं है कि वो क्या कर्म करें, क्योंकि कर्म उनको वो बुद्धि नहीं दी गई। तो इसलिए यहां पर ये समझ में आएगा कि ये जो प्रजा के विषय में भगवान बता रहे हैं ये हम मनुष्य हैं, क्योंकि हम यज्ञों के साथ उत्पन्न हुए हैं। अब यदि इस पहली लाइन में एक और शब्द पर हम गौर करें जिसको हमने हाईलाइट किया है, किसको हाईलाइट किया? यज्ञों को। सह यज्ञा प्रजा श्रेष्ठवा। तो यहां पिछले श्लोक में भगवान ने क्या कहा था? यज्ञात यज्ञ अर्थ यज्ञ, सिंगुलर यज्ञ यूज किया था। यह श्लोक की पहली लाइन में भगवान क्या कह रहे हैं? यज्ञ नहीं, यज्ञा। यज्ञा का अर्थ क्या हुआ? बहुवचन। पिछले श्लोक में यज्ञ एक वचन में भगवान ने इस्तेमाल किया था, इस श्लोक में सह यज्ञा, यज्ञा का अर्थ है बहुवचन, प्लूरल फॉर्म। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि हम मनुष्य, ये प्रजा, हम मनुष्य सृष्टवा, हमारी सृष्टि एक यज्ञ से नहीं, बहु यज्ञ से, सह यज्ञ, बहुत से यज्ञों से, उनके सहित हमारी उत्पत्ति हुई है। तो इसका अर्थ क्या है? हमारे आचार्य बताते हैं। सबसे पहले इसका अर्थ ये, भगवान बता रहे हैं, सब कोड लैंग्वेज है हिंदी के, सह यज्ञ से भगवान बता रहे हैं कि चार युगों में मैंने अलग अलग यज्ञ दिए हैं, तो ये सब हमने पहले भी सुने होंगे। सत्युग में ध्यान यज्ञ, त्रेता में हवन यज्ञ, द्वापर युग में परिचर्या यज्ञ अर्थात अर्च विग्रह की पूजा आराधना, और कलयुग में संकीर्तन यज्ञ। तो ये प्लूरल यज्ञ का अर्थ है कि हर एक युग के लिए भगवान ने एक एक यज्ञ निर्धारित किया है। तो यदि हम यज्ञ जो प्लूरल है अगर उसका ट्रांसलेशन या उसकी तुलना हम करेंसी से करें, जैसे कितने देशों की अलग अलग करेंसीज होती हैं, तो यदि मुझे अमेरिका में कुछ चीज खरीदनी है तो मुझे डॉलर चाहिए वहां पर, गांधी जी काम नहीं आएंगे इतना वहां पर, तो वहां पर मुझे डॉलर चाहिए, तो वो वहां की करेंसी है। तो ये एग्जाम्पल हमने क्यों लिया है कि हर एक युग में उस युग में जीने के लिए एक करेंसी भगवान ने निर्धारित की है। सत्युग का करेंसी है ध्यान यज्ञ, कृते यद ध्यायतो विष्णु, त्रेतायाम यजतो मखई। त्रेता युग की करेंसी है हमने देखा क्या है, हवन यज्ञ। और कलयुग की करेंसी है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो एक करेंसी का एग्जाम्पल इसलिए लिया है कि कोई अगर पूछे कि तो कलयुग में यदि मैं ध्यान करूंगा तो कुछ व्यापार हो पाएगा क्या अध्यात्म में इस करेंसी से? देखिए कि मान लीजिए मैं अमेरिका से डॉलर लेके आता हूं, तो अगर मैं पूछूं कि क्या अमेरिकन डॉलर इंडिया में काम आएगा, मुझे आएगा क्यों नहीं आएगा कन्वर्ट करके, है कि नहीं? वो एयरपोर्ट पे ही रहते हैं वो सब काउंटर्स, करेंसी कन्वर्जन्स, कन्वर्ट करके मैं उसको यूज कर सकता हूं। रुपीस को भी डॉलर में कन्वर्ट किया जा सकता है, डॉलर को भी रुपीस में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मुझे यदि अमेरिका में कोई ट्रांजैक्शन करना है तो मेरे पास यहां का जितना अगर करेंसी है, मैं वहां पर अगर कुछ करना चाहता हूं तो मुझे कन्वर्ट करना होगा। तो वैसे ही पिछले युगों के जो भी हम यज्ञ लें निर्धारित, उन यज्ञों को हम इस संकीर्तन यज्ञ में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए करेंसी का एग्जाम्पल लिया कि जब तक उसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे संकीर्तन यज्ञ में, इस युग में वो यज्ञ किसी काम का नहीं। मैं $100 लेके घूमू पान पट्टी की दुकान में भी वो काम में नहीं आएगा जब तक कन्वर्ट नहीं करूंगा। तो चाहे कोई कितना भी बड़ा ध्यान योगी हो, जब तक कि वो कन्वर्ट नहीं करता अपने आप को या उस ध्यान यज्ञ को संकीर्तन यज्ञ में, उसका वो इतना बड़ा करेंसी भी कुछ काम का नहीं कलयुग में। क्योंकि सत्युग को बताया गया है स्वर्णिम युग, युग गोल्डन यज्ञ युग है वो, और ये जो अपना कलयुग है ये आयन एज लोहा। लेकिन यहां पर जो हमको यज्ञ दिया गया है हम कलयुग निवासियों के लिए, तो कोई सत्युग कि उसको फॉलो करना चाहता है तो उसमें जब तक कि वो संकीर्तन यज्ञ को इंक्लूड नहीं करता या कन्वर्ट नहीं करता उसको, चाहे वो हवन हो, इसलिए हम देखो इस्कॉन में भी आप देखो हवन भी होते हैं, कितने हमारे नरसिंह यज्ञ होते हैं और दीक्षा के समय, किसी के विवाह के समय, तो वो यज्ञ कब सफल होते हैं? जब उसमें हरिनाम, हरिनाम संकीर्तन से वो कल्मिनेट होते हैं। डीटी वर्शिप है, जो कि इस युग का यज्ञ नहीं है वो, लेकिन उस डीटी वर्शिप में जब तक कि चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स, जो मंत्र हैं भगवान का नाम, जब तक वो इंक्लूड नहीं होता, नहीं, ध्यान भी उसी प्रकार से। तो इसलिए जब भगवान कह रहे हैं अर्जुन को सह यज्ञा, तो अर्जुन समझ गए कि द्वापर युग के लिए जो यज्ञ निर्धारित किया गया है वो मुझे पालन करना है। या अर्जुन के द्वारा भगवान हम सबको ये बता रहे हैं कि हम जिस युग में हैं उस युग का यज्ञ हमें पालन करना। तो ये कंफ्यूज नहीं हो जाना चाहिए कि अरे शास्त्रों में तो शायद एक ही प्रकार का यज्ञ बताया होगा, हम तो अब कलयुग में हैं, हमारे पास न तो इतनी आयु है, न इतनी क्षमता है, न इतनी बुद्धि है, न इतनी स्मृति है, हमारे लिए स्पेशल टेलर मेड केवल यज्ञ नहीं, युग अवतार, उस युग के अवतार आकर हमको सिखाते भी हैं कि वो यज्ञ कैसे हम पालन करें। अब एक और अर्थ यज्ञ, बहुवचन में जो यज्ञ है उसका अर्थ ये है कि भगवान ये बोल रहे हैं कि अलग अलग युग में अलग अलग यज्ञ हैं, और हर एक युग में जो यज्ञ हैं उसमें भी वैरायटी है। तो उसका अर्थ क्या हुआ, हमारे आचार्य बताते हैं उसका अर्थ ये है, यज्ञ का एक और अर्थ है अपने अपने स्वधर्म का पालन करना। तो जो भगवान ने वर्णाश्रम दिया है, चार वर्ण और चार आश्रम, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जो वर्ण और आश्रम दिए हैं, जब कोई अपने स्वधर्म में स्थित होकर वो कर्म करता है तो वो यज्ञ का पालन कर रहा है। तो इसलिए हां, संकीर्तन यज्ञ ये तो सबके लिए एक स्टैंडर्ड यज्ञ है, तो यज्ञ का वो एक अर्थ हुआ। यहां पर भगवान यज्ञ का दूसरा अर्थ ये बता रहे हैं कि अर्जुन तुम केवल अपने स्वधर्म का पालन करोगे तो भी तुम यज्ञ में लग रहे हो, क्योंकि यहां पर अर्जुन अपने स्वधर्म का पालन, अर्जुन मानो ये बोले कि भगवान आपने तो बोला कि सह यज्ञ, तो जो द्वापर युग का यज्ञ है डीटी वर्शिप, तो चलो जयपुर चलते हैं, डीटी वगैरह लेके आते हैं, इंस्टॉल करते हैं, फिर डीटी वर्शिप करेंगे। तो भगवान कह रहे हैं यज्ञ का एक और अर्थ है अपने स्वधर्म का पालन करना। और कितने अलग अलग प्रकार के गुण धर्म में उनके कर्मों के अनुसार जीव स्थित हैं, मनुष्य हम, तो हमारे स्वधर्म के अनुसार जो हम कर्म करेंगे वो यज्ञ। अब दूसरी लाइन में भगवान कहते हैं पुरोवाच प्रजापति ही, इसका अर्थ है प्रजापति के द्वारा पहले कहा गया। पुरोवाच, जैसे उवाच, श्री भगवान उवाच, पुरो उवाच ये कह सकते हैं कि पहले कहा गया। तो सबसे पहले हम पुरोवाच शब्द को लेंगे, इसके दो अर्थ हैं, पहले कहा गया और पुरातन काल में कहा गया। जैसे कि हम किसी भाषा में भी जब कहते हैं कि अरे मैंने पहले ही बताया था, मैंने पहले ही बताया था कि ऐसा होगा, तो अब ये पहले बताना, इसका कोई टाइम निर्धारित नहीं किया गया है कि कितने पहले बताया था, जैसे कि एक दो क्रिकेट टीम्स, उनका वो मैच शुरू होने से पहले होता ना टॉस, टॉस, हाँ, तो टॉस चल रहा था। तो अब टॉस में क्या होता है, दोनों कैप्टन आते हैं और वो एम्पायर सिक्का उड़ाता है। तो जैसे वो सिक्का उड़ाता है, सिक्का उड़ाने से पहले बोलना नहीं है, वो सिक्का हवा में रहता है तब बोलना होता है ना, हेड्स या टेल्स। तो वो एम्पायर ने उड़ाया, पहले पूछा है कि भैया कौन सा टीम बोलना चाहेगा, क्या हेड्स टेल्स। तो हमारे इंडियन टीम का कैप्टन, मैं बोलूं, तो एम्पायर ने सिक्का उड़ाया, अभी ये बोल नहीं रहा, एम्पायर बोला बोलो जल्दी बोलो, ऐसे ऐसे कर रहा है वो, बोला अरे जल्दी बोलो, वो गिर गया, वो सिक्का गिर गया, बोला यही तो था। तो जब कोई कहता है कि मैंने तो पहले ही बताया था, तो पहले कितना पहले भैया, एक मिनट पहले, एक घंटे पहले, एक हफ्ते पहले, एक साल पहले, एक युग पहले। तो भगवान यहां पर कोई चांसेस नहीं रख रहे, पुरोवाचक का दो अर्थ हो गए, पुरातन काल से कहा गया है कि ये यज्ञ की विधि हम मनुष्यों के लिए बनाई गई है। तो फिर आप पूछोगे तो फिर ये पहले कहा गया मतलब क्या है, पुरातन काल से, ठीक है पुरातन काल, पुराने जमाने में, तो पहले कहा गया का अर्थ 3.3 में कहा गया, थ्री पॉइंट थ्री कुछ हफ्ते पहले लिया हमने, भगवान के लिए तो कुछ मिनट पहले ही बोला उन्होंने। तो यहां पर लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। तो यहां पर भगवान क्या कह रहे हैं, ज्ञान योगे न सांख्यानाम कर्म योगे न योगिनाम। तो अब यहां पर भी भगवान ने क्या कहा है, पूरा प्रोक्ता। तो ये दोनों श्लोक को हम ये लें, अगर 3.3 और आज का श्लोक 3.10, तो 3.3 में भगवान ने कहा ज्ञान योगे न सांख्यानाम कर्म योगे न योगिना। तो 3.3 में भगवान योग के विषय में बोल रहे हैं, और 3.10 आज के श्लोक में भगवान यज्ञ के विषय में बोल रहे हैं। तो इससे ये समझने आ रहा है कि पुरोवाच का अर्थ है कि पहले ये दो चीजें बताई गई है, कौन सी दोनों चीजें, यज्ञ और योग। तो अब यदि हम यज्ञ और योग इसकी व्याख्या करें, तो योग की परिभाषा हमारे शास्त्रों में दी गई है, भगवान से संबंध जोड़ना, और यज्ञ की परिभाषा दी गई है भगवान की पूजा में लगना। तो भगवान ने पहले योग की व्याख्या कर अर्जुन को परब्रह्म से जोड़ा। तो अब जोड़ने के बाद क्या, जोड़ने के बाद कुछ करना है ना, जुड़ने के बाद क्या करना है, यज्ञ। तो ये डिफरेंस है 3.3 और 3.10 में। अब पुरोवाच प्रजापति, तो प्रजापति शब्द, प्रजा और पति, पति तो बहुत सुना हमने, लेकिन आज जितने सारे पति बैठे हैं सावधान हो जाना, असली डेफिनेशन पति का आज सुनने मिलेगा शास्त्रों से। तो प्रजा समस्त जीव, और पति शब्द के दो अर्थ हैं, रचयिता और पालनकर्ता या पालक, वन हु क्रिएट्स एंड ऑल्सो वन हु मेंटेन्स। तो पति के ये दो अर्थ बताए गए हैं। तो प्रजापति ये शब्द का अर्थ हुआ जो समस्त जीवों के रचयिता हैं और समस्त जीवों के पालक, ये हैं पति। ये पति का मतलब है समस्त जीवों के रचयिता और समस्त जीवों के पालक। तो अब श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद, श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में श्लोक कहा है, जिसके अंदर आप देखोगे कितनी बार ये पति शब्द इस्तेमाल किया गया है और ये भगवान श्री कृष्ण के विषय में कहा, श्रिय पति यज्ञपति प्रजापतिर धियाम पतिर लोकपतिर धरापति पतिर गतिश्चांधक वृष्णि सात्वताम प्रसीदताम में भगवान सताम पति। तो जितने अलग अलग पति के डिस्क्रिप्शंस हैं एक श्लोक में सेकंड कैंटो के, इसमें बताया गया, तो आप लोग चेक करना कहां फिट होते हैं। कोई नहीं फिट हो सकता क्योंकि इसमें केवल भगवान श्री कृष्ण वही फिट हो सकते हैं। तो सेवन वेज हाउ कृष्णा इज नॉट जस्ट पति बट सुप्रीम पति। तो सबसे पहले श्रीय पति, हस्बैंड ऑफ श्री लक्ष्मी देवी। श्री कौन है? लक्ष्मी देवी। तो लक्ष्मी देवी के जो पति हैं वो हैं श्री पति। फिर यज्ञ पति, जो आज के श्लोक में भी जिसके विषय में बताया गया कि जितने विभिन्न प्रकार के प्रामाणिक शास्त्र पर आधारित यज्ञ हैं उनके जो ईश्वर हैं वो हैं यज्ञपति। फिर प्रजापति, जिसके हमने व्याख्या सुनी, कंट्रोलर ऑफ ऑल बीइंग्स। धियामपति, कंट्रोलर ऑफ इंटेलिजेंस। लोकपति, कंट्रोलर ऑफ ऑल क्रिएशंस। धरापति, कंट्रोलर ऑफ आवर प्लैनेट। ये विशेष रूप से सुखदेव गोस्वामी ने बताया परीक्षित महाराज को, क्योंकि परीक्षित महाराज इस धरातल पर, तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जिस धरातल पर आप हो या हम हैं, भगवान इसके पति हैं विशेष रूप से। कैसे? क्योंकि बाकी जितने सारे ब्रह्मांड इत्यादि हैं उनमें से भगवान विष्णु ने अपने इस भूमि देवी को गर्भोदक सागर से बाहर निकाला था। किसने? वराह देव ने। वराह देव ने भूमि देवी को, इसलिए भू वराह का मंदिर आप बहुत देखोगे। तो भगवान हमारे इस पृथ्वी लोक से बहुत ज्यादा अधिक प्रेम करते हैं, ये सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं धरापति में बहुत अधिक प्रेम करते हैं, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा स्कोप है। इसकी चर्चा हमने की थी, सबसे ज्यादा स्कोप भगवत धाम जाने की यहां पर है, इस वसुंधरा पर। और फिर फाइनली सताम पति, प्रोटेक्टर ऑफ हिज डियर डिवोटीज। तो यहां से समझ में आता है कि पति शब्द किसके लिए इस्तेमाल होना चाहिए। सबसे पहले पति शब्द वास्तविक रूप में केवल भगवान श्री कृष्ण के लिए ही रिजर्व्ड है। दिस वर्ड पति इज रिजर्व्ड ओनली फॉर लॉर्ड कृष्णा। तो आप लोगों में वहां फिर हम लोग क्या है? हम लोग क्या है? हम लोग सब प्रकृति हैं। पति केवल एक है, भगवान श्री कृष्ण एकले ईश्वर आर सब भृत्य। तो एकले पति केवल कृष्ण, आर सब पत्निया या आर सब प्रकृति, हम सब प्रकृति हैं। इसलिए इस भ्रांत धारणा में नहीं रहना था कि मैं किसी का मेंटेनर हूं, मैं पति हूं, मैं किसी का मेंटेनर हूं। क्योंकि मेंटेनर अगर वो अपने आप को बोल रहा है तो बलदेव विद्याभूषण वो अपने भगवद गीता की टीका में कहते हैं कि इफ एनीवन इज कॉलिंग हिमसेल्फ एज पति और मेंटेनर ऑफ समवन ही शुड नो दैट ही कैन से दैट ओनली इफ ही इज नॉट मेंटेन्ड बाय एनीवन एल्स. And only Krishna can say that he is the one, nobody maintains Krishna, he maintains rather everyone. So he is supreme pati. Otherwise, it is said husband and wife relation in this world is like workshop. Kaise? Where he works and she shops. तो इस संसार में लोग आजकल एक खाली डेफिनेशन पति का नहीं, कई लोग बोलते हैं मैं करोड़पति हूं, मैं लखपति हूं, अरबपति, कहां कहां पति लगाया जा रहा है आजकल. एक व्यक्ति का इंटरव्यू लिया गया, उसको पूछा गया कि भाई आप लखपति कैसे बने. तो उसने कहा कि मेरी पत्नी की वजह से. वाह, कैसे आपकी पत्नी की वजह से? क्योंकि उससे मिलने से पहले मैं करोड़पति था. तो पति शब्द का सही अर्थ जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि हम सब के सुप्रीम मेंटेनर, प्रोटेक्टर, कंट्रोलर, ओरिजिनेटर, क्रिएटर कौन है. ये सारे जो वर्ड्स हैं वो पति के ही अलग अलग सिनोनिम्स हैं. क्या? क्रिएटर, मेंटेनर, कंट्रोलर, प्रोटेक्टर, ये सब पति के अलग अलग डेफिनेशंस हैं. तो अब भगवान आगे बोलते हैं, पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम. तो इस शब्द को हम लेंगे तो इसका विभाजन इस प्रकार से हुआ है, प्रसव ईश, जिसका अर्थ एक एक हम लें तो प्र का अर्थ है विशेष, सव का अर्थ है पूजा के लिए भेंट, और ईश का अर्थ है भगवान. तो क्या अभी मतलब हुआ इसका? भगवान की पूजा के लिए विशेष भेंट, इसका मतलब प्रसविष्यध्वम का मतलब यह हुआ, भगवान की पूजा के लिए विशेष भेंट. तो यज्ञ का अर्थ हमने लिया था, योग का अर्थ क्या है? भगवान से संबंध जोड़ना. यज्ञ का अर्थ है भगवान से जुड़ने के बाद पूजा, और यहां पर भगवान कहते हैं अनेन प्रसविष्यध्वम, मतलब उस पूजा में विशेष भेंट भगवान को अर्पित करना. तो अब बलदेव विद्याभूषण प्रसविष्यध्वम को अर्जुन के साथ उसकी तुलना कर रहे हैं कि यहां पर अब अर्जुन मानो भगवान से पूछे कि मैं आपको क्या विशेष भेंट अर्पित कर सकता हूं, क्योंकि ये सारे जितने सात पति हमने देखे अभी, श्रियापति, धियामपति, यज्ञपति, लोकपति, धरापति, सात्वतामपति, जितने सारे पति, वो सारे पति उनके स्रोत अर्जुन के रथ को चला रहे हैं. तो अर्जुन का सौभाग्य देखिए कि अर्जुन को कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, यज्ञ करने के लिए या यज्ञा, बहुत से यज्ञ करने के लिए वहां पर यज्ञेश्वर, यज्ञपति मौजूद हैं. तो मानो अर्जुन भगवान से पूछे कि आप जो कि यज्ञपति हो, हम सब के पति हो, तो आप के इस यज्ञ रूपी कर्म में मैं क्या विशेष भेंट अर्पित करूं। अनेन प्रस विश्यध्वम, कि क्या विशेष भेंट अर्पित करूं। तो अब देखिए यहां पर बलदेव विद्याभूषण ये कह रहे हैं कि एक होता है कि साधारण भेंट, हम जब किसी से मिलते हैं, किसी को ज्यादा जानते नहीं, जब लोग जाते हैं ना किसी के बर्थडे पार्टी में, मुझे याद है कि बचपन में हम जिस कॉलोनी में रहते थे तो इतने सारे बर्थडे पार्टीज हो, हर महीने में कोई ना कोई बर्थडे पार्टीज में जाना पड़ता। तो स्टैंडर्ड क्या है, लिफाफे में चलो 21 रुपया, 51 रुपया, और वो भी थोड़ा अगर अच्छे से जानते हैं तो थोड़ा ज्यादा डाल दो, 101 डाल दो, इतना कुछ जानते हैं तो 11 काम चलेगा। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सवविष्टम, प्रसव नहीं होगा, ये विशेष भेंट नहीं होगी, क्योंकि हम उनके साथ उनका कोई विशेष रिश्ता ही नहीं है, इसलिए लिफाफे में काम चलता है। जब कोई बहुत क्लोज होता है तो उसको हम क्या, उसके लिए उसको क्या पसंद है वो जानकर, फिर वो खरीद कर उसको अच्छे से पैक कर कर वो फिर हम देते हैं, है कि नहीं। तो जब भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन क्या मैं तेरे लिए कुछ विशेष लगता हूं क्या, तेरे जीवन में मैं कुछ विशेष हूं क्या, अर्जुन हाँ डेफिनेटली आप तो विशेष हैं, बाकी सब शेष, आप शेष। तो भगवान से विशेष अर्जुन के लिए कौन हो सकता है, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन यदि मैं तेरे लिए विशेष हूं तो मुझे विशेष गिफ्ट ऑफर कर, और विशेष गिफ्ट स्टैंडर्ड गिफ्ट से अलग होता है। तो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि स्टैंडर्ड यज्ञ में जो मंत्र आहुति ये सब ऑफर होते हैं, भगवान वो सब नहीं मांग रहे, वो तो स्टैंडर्ड है, मेरे को विशेष कुछ स्पेशल चाहिए। क्या स्पेशल चाहिए, गांडीव उठा के मार इनको। कोई भी जो अग्निहोत्र या फिर हवन वगैरह की जो क्रिया होती है उसके अंदर ये नहीं बताया गया कि यज्ञेश्वर विष्णु को इस प्रकार की भेंट ऑफर करो, क्या दुर्योधन का कटा हुआ सर उसके अंदर नहीं। यहां पर भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि हमारा रिश्ता विशेष है, इसलिए मैं अनेन प्रसविष्यध्वम ये विशेष भेंट तुमसे मांग रहा हूं, जो कि स्टैंडर्ड यज्ञ की भेंट से अलग है। और ये कोई कहेगा कि अगर ये स्टैंडर्ड यज्ञ की भेंट से अलग है तो फिर मैं अपने तरीके से कुछ भगवान को ऑफर, नहीं, हम स्पेकुलेट करके अपने तरीके का विशेष भेंट ऑफर नहीं कर सकते भगवान को। तो कल को हम बोले कि ठीक है मैं भी अपने नेबर का सर काट के देता हूं, बहुत परेशान करता है वो मेरे को, तो फिर मेरा भी अनेन प्रसविष्यध्वम हो जाएगा भगवान के लिए विशेष भेंट नहीं। यहां पर जिस विशेष व्यक्ति को ये विशेष भेंट चाहिए वो अपने विशेष श्रीमुख से बोल रहे हैं, so we cannot take laws or spiritual laws also in our hands and think that I can imitate Arjun, because Arjun was vishesh. To ye Baldev Vidyabhushan ke anusar anena prasavishyadvam ki vyakhya hai. Ek bahut interesting baat wo batate hain ki yagyon mein एक तो आज के श्लोक में अनेन प्रसविष्यध्वम बताया गया है, और यज्ञों के विषय में जितने सारे ऋग साम यजुर ये सारे वेद हैं इनके अंदर बताया गया है अजेन यष्टव्यम। तो अजेन का अर्थ बताया गया, अज के दो अर्थ हैं यहां पर। तो बलदेव विद्याभूषण ये प्रस्तुत कर रहे हैं कि कैसे संस्कृत वर्ड को कॉन्टेक्स्ट के साथ नहीं समझा जाए तो कितना बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। तो अजेन यष्टव्यम का अर्थ है कि अज को यज्ञ में ऑफर करो, अज को यज्ञ में ऑफर करो। तो अब प्रश्न है कि अज क्या है, तो संस्कृत में अज का एक अर्थ है बीज, जैसे यज्ञ में हम बीज ऑफर करते हैं, तो बीज एक्चुअल मीनिंग ये है। जब कॉन्टेक्स्ट किसके लिए है, अज का यज्ञ में क्या ऑफर करना। और संस्कृत में अज का एक और अर्थ है बकरा, तो साधारणतः ये मुहावरा ना बलि का बकरा बोलते हैं ना, कि उसमें ऑफर किसमें, सैक्रिफाइस में, यज्ञ में बकरे को ऑफर किया। तो ये है उसी वर्ड अज का मिस इंटरप्रिटेशन। जैसे कि मैं यदि आपके सामने कहूं रावण की सोने की लंका थी, क्या समझ में आप, रावण की सोने की लंका थी, तो मानो हनुमान जी के बदले आप भेजे जाए गए होते वहां पे, तो कुंभकर्ण को देख के तो आप बोलते हैं सही में सोने की लंका है, है ना। तो रावण की सोने की लंका, इसके दो अर्थ हो सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहला अर्थ क्या समझ में आया, गोल्डन, सोने का अर्थ गोल्डन और सोने का दूसरा अच्छी से जानते हैं। तो इसलिए जब यहां भगवान बलदेव विद्याभूषण, थोड़ा टेक्निकल है समझने की कोशिश कीजिए, कि भगवान ने जब ये यूज, बलदेव विद्याभूषण ने वर्ड यूज किया है अजेन यष्टव्यम, उसी प्रकार से भगवान ने आज के श्लोक में जो कहा गया है अनेन प्रसविष्यध्वम, तो उसमें हमको कॉन्टेक्स्ट के साथ समझना है कि जो विशेष ऑफरिंग भगवान मांग रहे हैं केवल उसी टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के लिए, ओनली फॉर दैट टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंस भगवान मांग रहे हैं, ये समझना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। जैसे कि अज हैज टू बी ऑफर्ड अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, नहीं कि बीज के बदले बकरा लेके आओ। अब लास्ट जो लाइन, एष वो श्विष्ट कामधुक, तो इसका अनुवाद है यह यज्ञ तुम्हारी समस्त इष्ट कामनाओं को पूरा करेगा, समस्त इष्ट कामनाओं को यह पूरा करने वाला है। तो अभी प्रश्न है कि ये इष्ट कामनाएं क्या है। आपको याद है हमने अपने पिछले सेटिंग में ये दो शब्द पर चर्चा की थी, इष्ट और अनिष्ट। तो इष्ट कामनाएं आज के श्लोक के अनुसार भौतिक भोग एवं सुरक्षा और उसके साथ साथ वैकुंठवास। तो आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो इस यज्ञ का पालन करता है प्रामाणिक रूप से, जो कि मेरे द्वारा, प्रजापति कौन है, भगवान, प्रजापति के द्वारा दिया गया ये यज्ञ का पालन कोई करता है, तो भगवान कहते हैं कि भौतिक भोग एवं सुरक्षा उसको उस यज्ञ के द्वारा मिलेगी और साथ साथ वैकुंठवास भी मिलेगा। जैसे श्रील प्रभुपाद के पास एक मायावाद व्यक्ति आए, मायावादी आए, और वो प्रभुपाद से ये चर्चा करने लगे, आप कौन सा वाद का पालन करते हो, मैं निर्विशेषवाद का पालन करता हूं, आपका कौन सा वाद है। तो ये वाद होते ना, जैसे संवाद, विवाद, तो विवाद करने आया था। तो प्रभुपाद ने बहुत ही सिंपल तरीके से इस व्यक्ति को समझाया। प्रभुपाद ने कहा कि देखो, चाहे मैं वैष्णववाद का पालन कर रहा हूं या आप मायावाद का, निर्विशेषवाद का पालन कर रहे हो, हम दोनों ये डिस्कशन के बाद खाने के लिए क्या खाएंगे, अन्न। व्हाटएवर रिलीजन और पाथ वी मे बी फॉलोइंग बट एट द एंड ऑफ द डे वी रिक्वायर ग्रेन्स टू ईट. तो प्रभुपाद ने कहा कि वो ग्रेन्स कहां से आएंगे. प्रभुपाद ने कहा ग्रेन्स विल कम थ्रू रेन्स. आगे के श्लोक में आने वाला है 3.13 में. ग्रेन्स विल कम थ्रू रेन्स एंड रेन्स विल कम व्हेन यू फॉलो यज्ञ. एंड द यज्ञ फॉर दिस एज ऑफ कलयुग इज हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे. तो प्रभुपाद ने कहा जस्ट टू ईट योर एवरीडे ग्रेन यू नीड टू चैंट हरे कृष्णा. फॉरगेट अबाउट कृष्ण प्रेम, फॉरगेट अबाउट योर वाद एंड दिस वाद. तो बहुत लॉजिकल प्रभुपाद ने प्रेजेंट किया है. तो इसलिए ये नहीं समझना चाहिए कि यज्ञ केवल हमको अध्यात्म दिलाए. यज्ञ के द्वारा ये जो हमारे बेसिक नेसेसिटीज हैं आज के श्लोक के अनुसार वो बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल करता है यज्ञ. तो इष्ट कामनाएं ये हैं. इसलिए आज के श्लोक के अनुसार यज्ञ क्या है, कंप्लीट पैकेज फॉर अवर मटेरियल प्रॉस्पेरिटी एंड स्पिरिचुअल इमेंसिपेशन. कंप्लीट पैकेज है. तो कोई ये नहीं कहेगा कि अरे भाई मैं तो मटेरियलिस्ट हूं मैं क्यों यज्ञ करूं. इवन फॉर अ मटेरियलिस्ट टू एंजॉय द रिसोर्सेज ऑफ दिस मटेरियल नेचर यज्ञ हैज टू बी फॉलोड. इसलिए भगवान ने आज के श्लोक में सबको इंक्लूड कर लिया, चाहे वो नास्तिक है, आस्तिक है, भौतिकतावादी है, मायावादी है, वैष्णववादी है, जो भी यज्ञ आपको उसमें से सब कुछ मिलेगा. ये इंपॉर्टेंस है यज्ञ का. और इसलिए हमारे कलयुग के जो यज्ञेश्वर कौन है, श्रीमान गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु. तो चैतन्य महाप्रभु को विशेष रूप से यज्ञों के ईश्वर बताया गया है. महाप्रकाश लीला में जब 21 घंटा चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान किया, हालांकि चैतन्य महाप्रभु एक छन्न अवतार के रूप में आए, कवर्ड इनकार्नेशन, एक सन्यासी का वेश धारण किया उन्होंने, लेकिन उस महाप्रकाश लीला में चैतन्य महाप्रभु ने हरेक अवतार का दर्शन दिलाया, हरेक अवतार का दर्शन अपने भक्तों को दिलाया. तो उसके द्वारा चैतन्य महाप्रभु ये कह रहे थे कि जितने सारे अवतारों के लिए जितने यज्ञ किए जाते हैं आज तक, उन सारे अवतारों का स्रोत मैं हूं. अर्थात उनके लिए जितने यज्ञ किए गए हैं उन सारे यज्ञों का स्रोत मैं हूं, और उन सारे यज्ञों का स्रोत ये हरे कृष्ण महामंत्र है. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि चाहे कोई किसी भी प्रकार के यज्ञ को न कर पाए, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणे न काल. बाकी के यज्ञों में इतना नियम, हार्ड एंड फास्ट रूल, ये सब कुछ है, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र के लिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है नियमित न काल. जैसे कि जयपताक महाराज वो बता रहे थे कि बहुत ट्रैवल करके प्रीचिंग करते हैं वो, तो रशिया में हर साल एक बाहर का एक बहुत ही मटेरियलिस्टिक फेस्टिवल उनका होता है, वोल्गा रिवर के, वोल्गा रिवर एक है वहाँ पे, वोल्गा रिवर के बैंक्स पे बहुत लाखों की संख्या में वहाँ पर सब पार्टी मनाने और वो फेस्टिवल में अटेंड करने आते हैं, और उसमें सब अलग अलग प्रकार के बूथ होते हैं, कैंप्स होते हैं, प्रेजेंटेशन होते हैं. तो हमारे डिवोटीज जयपताक महाराज और कीर्तन के ग्रुप वहाँ पर गए. एक्चुअली हाँ, ये एक फोक फेस्टिवल है रशिया में, इसको कहते हैं एक फोक फेस्टिवल. जैसे कि फोक सॉन्ग्स वहाँ पे गाते हैं, डांस करते हैं, अलग अलग जो भी यूरोप के, रशिया के. तो हमारे जो हरे कृष्णा डिवोटीज वो गए कि हम भी अपना इंडियन फोक सॉन्ग गाएंगे. तो तो हमारे डिवोटीज बहुत इंटेलिजेंट है, हर चीज को यज्ञ बना लेते हो, संकीर्तन यज्ञ में करेंसी को कन्वर्ट करते हो। एक हमारे सन्यासी हैं जो कि बता रहे थे कि वो चाइना में प्रीचिंग करते हैं और वहां पर कम्युनिज्म के वजह से बहुत मुश्किल है लोगों को प्रसाद भी खिलाना, हरे कृष्ण महामंत्र जप कराना, लेकिन एक चीज बहुत पॉपुलर है वेस्ट में, वो है योग। सब योगा करने के लिए सब आतुर है। तो ये सन्यासी उनको क्लासेस के लिए बुलाते हैं कि वी विल हैव, आई विल टीच यू योगा। तो उसके लिए वो योगा सीखे, तो योगा के लिए बहुत से चाइनीज आके बैठे, तो उनको वो योगा सिखाते हैं। फिर योगा सिखाने के बाद बोलते हैं, नाउ यू शुड नो द योगा फिलॉसफी बिकॉज देयर इज नो यूज ऑफ सिंपली योगासंस विदाउट योगा फिलॉसफी। तो सो हाँ, व्हाट इज योगा फिलॉसफी? भगवद गीता का श्लोक निकालते, दिस इज योगा फिलॉसफी। तो वो लोग फिर लेक्चर भी सुन रहे हैं, फिर वो कहते हैं, सो नाउ आफ्टर द योगा फिलॉसफी, फॉर दैट फिलॉसफी टू एक्चुअली स्टे इन योर कॉन्शियसनेस, यू हैव टू हैव द योगा सॉन्ग। एंड द योगा सॉन्ग इज हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एंड फॉर दैट योगा सॉन्ग टू गो ऑन, यू हैव टू हैव योगा फूड। तो जयप्रताक महाराज बता रहे थे कि ये फोक फेस्टिवल में अपने हरे कृष्ण डिवोटीज गए उधर, और सारे ये लोग रशियंस यूरोपियंस जिनको कुछ पता नहीं कि हरे का मतलब क्या है, कृष्ण का मतलब क्या है, राम का मतलब क्या है ये महामंत्र, कुछ पता नहीं। लेकिन जैसे कीर्तन शाम के 6 बजे इन्होंने, जो पीक आवर था, शाम के 6 बजे फेस्टिवल में कीर्तन चालू किए, तो इतने सारे वो जितने अलग अलग कैंप्स में लोग प्रेजेंटेशन देख रहे थे, उन सबको छोड़ के इधर आ गए। पता है क्यों? क्योंकि अपने कीर्तन का स्टाइल क्या है, पहले लीड सिंगर एक बार गाता है, फिर पूरा कोरस गाता है। तो बाकी जो फोक प्रेजेंटेशन था उसके अंदर वो लोग खाली बैठ के देख रहे थे, वन साइडेड था, खाली वो लोग गा रहे हैं, ये लोग बैठ के देख रहे। लेकिन उन्होंने देखा, अरे यहाँ पे हम पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। तो उन्होंने वो रशियन में ऊपर लिख दिया था, रशियन भाषा में ऊपर लिख दिया था, ज़ेप जाम ज़ेप जाम 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 ज़ेप ज़ेप ऐसे करके वो तो रशियन भाषा में पूरा महामंत्र लिख दिया। तो फिर ये लोग लीड सिंगिंग एक बार करते हैं, फिर सबको बोलते, सब लोग, तो सब लोग, और इतना नहीं, उसके बाद में डांसिंग, तो एक भी वो लोग देखे कि अपने लोग तो डांसिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बाकी प्रेजेंटेशन में हमको खाली बैठ के स्पेक्टेटर के जैसे देखना है, यहाँ पे तो हम भी प्लेयर बन रहे हैं। तो इतनी भीड़, शाम को 6 बजे जो वो कीर्तन चालू हुआ, रात के 11 बज गए नॉन स्टॉप। अभी जो लीड सिंगिंग कर रहे थे वो थक गए, लेकिन ये लोग ऑडियंस थके नहीं, ये लोग अनी और अनी और चाहिए, तो ये गाए जा रहे हैं। तो रात के 1:30 बज गए, शाम के 6 बजे से रात के 1:30 बज गए, नॉनस्टॉप कीर्तन चल रहा है, और फिर उनका जो एम्पलीफायर था उसमें से धुआं निकलने लगा। तो वो एम्पलीफायर उनको बंद करना पड़ा, उसमें से धुआं निकल रहा है, लेकिन वो ऑडियंस बंद नहीं हुई। ऑडियंस बोला, नहीं हमको और चाहिए, और गाओ। तो फिर बिना एम्पलीफायर के सारे डिवोटीज वो कीर्तन करते गए करते गए, सुबह तक, फ्रॉम इवनिंग 6 to morning 7, 12 घंटे से भी ज्यादा वो कीर्तन कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। और उसके बाद में जब वो फाइनली जब कीर्तन पूरा हुआ, तो उसमें से एक रशियन कपल वो जयप्रताक महाराज के पास आए वहां पे स्टेज पे, और वो बोले, जो भी आप गा रहे थे, हम लोग जो गा रहे थे सब मिल, मतलब क्या है इसका, मतलब क्या है? तो सोचिए, चैतन्य महाप्रभु ने जो बोला है कि स्मरणे न काल, कि इनको अर्थ नहीं पता, इनको ये नहीं पता कि इसका ओरिजिन क्या है, इसका इफेक्ट क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कुछ नहीं पता। कोई उन्होंने होली नेम सेमिनार वगैरह नहीं सुना कि इसका इतना इंपॉर्टेंस है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है ये होली नेम। लेकिन 13 घंटा चैंटिंग उन्होंने, क्या है वो, ये संकीर्तन यज्ञ जो कि सभी यज्ञों का निचोड़ है, सभी यज्ञों के जो स्रोत हैं, निचोड़ हैं, एसेंस है, सार है, क्योंकि वो उसमें लगे थे और कलयुग का जो निर्धारित यज्ञ है उसमें लगे थे। इसलिए मतलब नहीं जानते हुए भी इतना एब्जॉर्ब्ड वो पूरा 13 घंटे। सो दिस इज द पावर ऑफ संकीर्तन यज्ञ, एंड देयरफॉर संकीर्तन यज्ञ अमंगस्ट ऑल द यज्ञस इज कंसिडर्ड टू बी द टॉप मोस्ट। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। तो इस श्लोक में बृहन नारदीय पुराण का जो श्लोक है, इस श्लोक में 3 बार जब कहा गया है नास्तेव नास्तेव नास्तेव, नो अदरवे नो अदरवे नो अदरवे, तो ये 3 बार क्यों बोला है? नीदर बाय कर्म नॉर बाय ज्ञान नॉर बाय योग, ओनली भक्ति, ओनली बाय भक्ति कैन यू बी एंगेज्ड इन दिस संकीर्तन यज्ञ, एंड ओनली दिस भक्ति इज रिकमेंडेड फॉर दिस एज ऑफ कलयुगा। सो दिस इज द ग्लोरीज ऑफ the actual yagya which is recommended for all of us in this age of kaliga, which is the Hare Krishna Maha Mantra. So take home message aaj ke shlok ka kya hai, if one wants to be both materially and spiritually happy, then one should engage in performance of yagya. And when Krishna says sah yagya plural, you have to understand what is my prescribed yagya for this age, which is the Hare Krishna Maha Mantra. So now 3.11 अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग किस प्रकार से स्थापित होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय श्री प्रभुपाद की।